है इस तरह कभी, तो विच इज वेरी रेयर. तो अब ये सारी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहरहाल बैठाई गई है, तो अब पता चलेगा ये क्या है. इसके अलावा जी होमोसाइट इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं डरम पुलिस के, जैसे कि अभी अरफा बाजी और माजिद भाई भी बात कर रहे थे कि उनको एक ऑफ रोड ATV जो ट्रेलर था उसके पास एक कुछ ह्यूमन जो है रिमेन्स मिले थे इसमें एक पिकरिंग के इलाके में. तो बिल्कुल ही वो बर्न्ड थी ह्यूमन रिमेन्स जो थी एक शैलो ग्रेव के अंदर. तो अब इसका पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है डिटेल्स फाइंड करने के लिए कि ये कौन है कौन लोग नहीं है. एंड ये जो इनको मिला था ये नियर कंसेशन रोड 8 और साइड लाइन 20 जो है वो इलाका था उसके अंदर ये इनको मिला था. तो वहां पे जो ऑफिसर ऑफ चीफ कॉरनर है वो अब इन रिमेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर और भी किसी को इसके बारे में पता है तो वो कॉल कर सकते हैं इसको ड्यूरम पुलिस को एट 1-888-579-1520 या कि क्राइम स्टॉपर्स को अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहते तो उस पर फोन कर दें 1-800-222-8477. तो और ये लास्ट 3 वीक्स जो हैं उनसे जो है ये ट्रेलर
उनका ख्याल है कि ये हो सकता है लास्ट 3 वीक्स में हुआ
नहीं हुआ है क्योंकि कोई इसको देखा नहीं है उस ट्रेलर को. ये ऐसे उधर ये साइड पे पड़ा हुआ था. अच्छा जी ब्रैम्पटन की जो है कुछ हालत खराब हो सकती है जैसे कि कल बारिश जिस शिद्दत से हुई है उसके रहते हुए आज ब्रैम्पटन सिटी ने कहा है कि शायद रेजिडेंट्स लोकलाइज्ड फ्लडिंग जो है वो फेस कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने पूरी एक एडवाइजरी जो कि हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी है ई आवाज के ऊपर वो आप पढ़ सकते हैं. वो कहते हैं कि रेजिडेंट्स को हम कहते हैं कि आप सेफ रहें और बहुत ज्यादा जहां पे पानी है वहां पे कभी इलेक्ट्रिकली चार्ज भी हो जाता है क्योंकि कभी उसके अंदर तार गिर जाती है कोई इलेक्ट्रिसिटी की. तो पानी से दूर रहें, अपने पेट्स और बच्चों को दूर रखें और क्योंकि उसमें आप ड्राउन भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कितना गहरा पानी है
उसके अंदर. वो करंट होता है ना,
करंट भी होता है, आप ड्राउन भी हो सकते हैं जी. वाटर करंट भी है, दूसरा करंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है. और दूसरा वो कहते हैं जी कि वो कभी कभी क्या होता है कि वो रोड्स और साइडवेज जो है उसको भी भाग के वो ले जाता है. तो ऐसा ना हो कि आप समझे कि जी ये तो साइड वॉक थी. अगर आप फेमिलियर है अपने एरिया से और आप उस साइड वॉक पे जाना चाहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही अंदर गड्ढे के अंदर चले जाएं. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और इसके अलावा ये बात मुझे इनकी बड़ी फनी लगी कि रोड जो है वो भी गाड़ी के वेट से बह सकती है. हाँ? तो आप गाड़ी को भी लेके जो है वहां पे ना जाएं. बहरहाल इतना तो पता ही होता है मेरे ख्याल में लोगों, लेकिन फिर भी बड़ा उन्होंने एलैबोरेटली इसको वो किया. और इसके अलावा उन्होंने कहा जी पानी के अंदर ब्रोकन ग्लासेस वगैरह भी हो सकते हैं. तो अगर कोई छोटा बच्चा या आपका पेट जाए तो आप खुद भी जाएं तो आप जख्मी हो सकते हैं. तो आप उससे दूर रहें जब तक कि आपने प्रॉपर PPE नहीं पहना हुआ या कि कोई प्रॉपर क्लोथिंग जो होती है वो आपने नहीं पहनी हुई. इसके अलावा जनाब जो वेस्ट वैनकूवर में तो बहुत ही अजीब वाकया हुआ. एक वेडिंग पार्टी चल रही थी और वहां पे जाके जी एक लेडी है एंड 60s में और उन्होंने जाके जी गाड़ी वहां पे मारी और उसके अंदर 10 लोग जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, 2 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है. ये वाकया हुआ कीथ रोड के ऊपर वेस्टर्न वैनकूवर के अंदर. और इसमें कहा जा रहा है कि जो 10 पेशेंट्स हैं उसमें से 2 जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, 3 सीरियस में है और 5 स्टेबल है. और वो जो ड्राइवर है वो जो खातून है 60s में उनको भी वो भी जो है इंजर हुई थी इस इंसिडेंट में तो उनको भी हॉस्पिटल में लेके गए हैं. अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो जो पुलिस है उनकी कस्टडी में है कि नहीं और उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे या नहीं क्योंकि पुलिस कह रही है कि अभी ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन है अर्ली स्टेजेस में है.
कुड बी अ मेडिकल रीजन.
तो हाँ, कुड बी अ मेडिकल रीजन या कुछ भी. तो अभी तक कुछ उसके बारे में और ज्यादा खबरें आई नहीं है. इसके अलावा जनाब तुर्की में एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ. साउथ ईस्टर्न तुर्की में वहां पे जनाब एक क्रैश हुआ. उस क्रैश को वो बेचारे सारे पुलिस वाले और मेडिक्स और सारे फायर फाइटर्स और वो सारे जो थे वो उसको देख रहे थे. तो एक और जी उसी इलाके में उसी जगह पे एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे एक और क्रैश हो गया. अब ये जो 2 बैक टू बैक क्रैश हुए हैं इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली 35 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है. और इसके अंदर 2 पैरामेडिक्स भी थे, 2 जर्नलिस्ट भी थे, 3 फायर फाइटर्स थे. और ये जो है हुआ है क्रैश मॉडर्न प्रोविंस जो है इनका पहला हुआ गैजियन टैब निजिप के इलाके में और फिर दूसरी मॉडर्न प्रोविंस में हुई. अभी जैसे कि मैंने बताया कि वो भी एक को देख ही रहे थे तो दूसरी आके बस जो है उसने भी यहां पे क्रैश किया और उसके अंदर भी फिर 8 लोगों की डेथ हुई और 20 लोग जो है वो जख्मी हो गए. तो ऑल टुगेदर 35 लोग जो है इन 2 हादसों में जो है वो उनकी डेथ हुई है वहां पे. विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि एक जगह पे ऑलरेडी एक क्रैश हुआ है और लोग उसको देख रहे हैं तो उसी जगह पे दूसरा भी क्रैश हुआ.
चेन रिएक्शन नहीं हो गया ना.
हाँ चेन रिएक्शन थोड़ी देर में, लेकिन वो इतना वो नहीं था शायद, उसको पता नहीं नजर नहीं आया क्या नहीं हुआ. सो द सेम प्लेस. अच्छा जनाब, वीकेंड पे अगर आप खबरें देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि सोमालिया का जो कैपिटल है मोगाडिशु, वहां पे जनाब कुछ जो अलशाब के इलाके के लोग थे, उन्होंने जो ये टेररिस्ट इनको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है अल शबाब जो है, उसने सीज डाल दिया था 30 आवर्स का. तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर आई थी और उन्होंने इसको होटल को छुड़ाया तो था, लेकिन इसमें करते हुए काफी बिल्डिंग जो है वो शेलिंग के अंदर जो दोनों साइड से हुई उसमें काफी वो बिल्डिंग का नुकसान हुआ. 21 लोग जो है उनकी डेथ हो, 117 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं. लेकिन ये बड़ा मशहूर होटल था, हायत होटल, लेकिन यहां पे फिर पुलिस जो है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे और मिलिट्री ऑपरेशन जो था उसने फिर इस सीज को हटाया और अलशबाब के कुछ लोग जो हैं उन्होंने पकड़े हैं अब. और ये कोर्ट की थी ये सारी स्टोरी जो है अल जजीरा ने, एंड वी आर वेरी थैंकफुल. हम उन्हीं का एक ग्राफिक जो है जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, हम उनको दिखा रहे हैं. दिखाएं जरा फिर से जी, ये ग्राफिक जो है ये भी अल जजीरा का है. सो थैंक्स टू देम, उनकी वजह से हम आपको ये तस्वीरें और सारा कुछ जो है स्टोरी बता रहे हैं. तो अब वो कह रहे हैं जी कि बहुत सारे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो कह रही है सोमालिया की कि 106 जो है पीपल इंक्लूडिंग विमेन एंड किड्स उनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बहुत सारों की डेथ भी हुई है उसके अंदर. न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक चौंका देने वाली स्टोरी आई है और इसके मुताबिक आपको पता ही है हमने बहुत डिटेल में आपको पेगासस जो वायरस था जो एनएसओ ग्रुप बनाता है इसराइल का उसके बारे में एक स्टोरी बताई थी. और आपको पता ही है कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बहुत लोगों की रिजेंटमेंट आई थी और उन्होंने कहा था कि ये कैसे जो है एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट और लोग जो हैं इनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये ली जा रही है और कोई भी ले रहा है वो. यानी कि होना तो ये चाहिए था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास जाती अगर वो टेररिस्टों को ट्रैक करना चाहते थे, जो कि एनएसओ ग्रुप ने ओरिजिनली कहा था कि ये इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी आपके मुल्क में होगी तो आप फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये फिर लोगों के पास चली गई और लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास जाने लगी. तो आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी है इसके मुताबिक एनएसओ ने इनका जो सीईओ है शालव हुलियो उसको इन्होंने सैक कर दिया है. लेकिन न्यूज ये है कि सैक तो इसको किया है बट ही विल स्टिल स्टे एज पार्ट ऑफ द कंपनी. और इनके जो हैं सीईओ जो है यारोन सोहत वो अब इंटरिम बेसिस के ऊपर सारी चीजों को देखेंगे. और लास्ट ईयर जो था यूएस ने इनको प्लेस किया था अंडर रिस्ट्रिक्शंस और इन्होंने कहा था कि ये अननेसेसरली और इलीगली कंडक्ट कर रहे हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लोगों के ऊपर जो हैं ये अब आए रखे हुए हैं जो कि जरूरी नहीं है. ये हमेशा से जो एनएसओ ग्रुप था उसने इसको डिनाई किया था और उसने कहा था कि नहीं, हमने सिर्फ गवर्नमेंट्स को दिया है जो कि अप्रूव्ड बाय इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो हम सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट्स को देते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, तो हम हर किसी को नहीं देते हैं. बहरहाल ये बहुत सारे लोगों के हाथ में आई और इस तरह. तो इनके साथ जो शालव हुलियो के साथ जो रिलेटेड कुछ लोग हैं विच मेक्स क्वाइट अ बिग नंबर 13% ऑफ द वर्क फोर्स जो कि इनकी बड़ी कोर टीम थी इनके साथ काम करी थी, उनको भी आज डिसमिस किया गया है. तो अब देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आती है. बहरहाल काफी इसने पेगासस ने दुनिया में तबाही जो है वो मचाई है. रॉयटर्स की जनाब आज एक रिपोर्ट है और इंग्लैंड के अंदर जो है बदबख्तियां इंग्लैंड गवर्नमेंट की. अब प्राइम मिनिस्टर बनने का तो बड़ा शौक है सारों को, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप जो है ना बदबख्तियों के साथ आ रही है इंग्लैंड के अंदर. हमने आपको बताया था वीकेंड के ऊपर कि जी बहुत सारे रेल वाले बसों वाले सारे जो है स्ट्राइक पे गए हैं, ट्यूब वाले जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं. आज जनाब वहां की जो बिगेस्ट पोर्ट है पोर्ट ऑफ फेलिक्सटो उसके भी कोई 2000 वर्कर जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं. और अगेन बातें वही हैं कि इन्फ्लेशन हाई है, हमारी तनख्वाहें ठीक नहीं है, हमको जो है प्रॉपरली हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर सकते, कोई बोनसेस नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटीज नहीं है. तो ये अब ऐड करेंगे यूके की जो शिपिंग फ्रेट जो है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे. और ये आज भी जो है क्योंकि ऑलरेडी भी दो स्ट्राइक्स चल रही है ना, बसों की भी स्ट्राइक चल रही है, ट्यूब्स और ट्रेनों वालों की भी स्ट्राइक चल रही है. तो बल्कि आज की ये खबर थी कि 1 in 5 ट्रेन्स वर नॉट रनिंग इन इंग्लैंड, राइट, ये भी चल रहा था. और इसके अलावा अब और तीसरी न्यूज ये आ रही है कि 4-day स्ट्राइक कल से पोस्टल वर्कर्स जो है वो भी कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है ये जो बहुत बड़ा इनका टेलीकॉम जायंट है बीटी, उसने भी कहा है जी कि हमको अब कंप्लीटली सर्विसेज स्टॉप करनी पड़ेंगी इसलिए क्योंकि हमारे पास वर्कर्स ही नहीं है. और इसके साथ साथ अमेजोन के जो वेयर हाउस वर्कर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं, रिफ्यूज कलेक्टर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने पिछले दिनों में भी की थी और अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो हम भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्राइक्स में. तो मतलब है कि पूरा इंग्लैंड ही शटडाउन फिर हो जाएगा. तो क्या चल रहा होगा, शायद कोर्ट्स चल रही होंगी और पुलिस चल रही होगी और तो कुछ भी नहीं चाहिए, या पार्लियामेंट चल रही होगी, बाकी तो सब लोग जो है वो उसके ऊपर जा रहे हैं. अच्छा जनाब, आज फिर से जो है चाइना की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया है, क्योंकि अब साउथ कोरिया ने, पहले तो ताइवान उनको हेडेक दे रहा था, अब साउथ कोरिया ने भी यूएसए के साथ मिलकर अपनी जो है मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी हैं. अच्छा ये कह रहे हैं कि जी ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं हम नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए कर रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं कि हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी वॉर. ये जो तुम बैक टू बैक मिसल के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, इन्होंने इन एक्सरसाइजेस का नाम जो है वो दिया है उल्ची फ्रीडम शील्ड, जो कि आज से शुरू हुई है. और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, जो जिन्होंने के कुछ अरसा पहले जो है वो इन मई उन्होंने जो है नए वो बने थे प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने कहा था जी कि मैं नॉर्मलाइज टाइज करूंगा नॉर्थ कोरिया के साथ, लेकिन अपना डिटेरेंस जो है उसको भी मैं हाई करूंगा, क्योंकि ये जो है कोरियन पेनसुला में ये जो हर वक्त मिसल के अटैक्स और ये तजर्बे करते रहते हैं, अटैक्स तो नहीं तजर्बे करते रहते हैं, तो उनके बारे में हमको भी उनको बताने की जरूरत है कि हम भी रेडी हैं अगर तुमने कोई अटैक हमारे पे किया. तो अब जाहिर है कि ये सिर्फ नॉर्थ की बात नहीं है, चाइना भी जो अब इसको बड़े गौर से देख रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई ये यूएसए जो है इस इलाके के अंदर क्यों इतनी इंटरफेरेंस कर रहा है. यानी कि जो कंसर्न्स उसके थे रशिया के थे वो अब जो है चाइना के भी हैं कि ये क्यों नेटो वाले आप लाके उधर बिठा रहे हो, रशिया ने कहा था, और अब ये यूएस जो है क्यों इधर आ रहा है, वो चाइना के कंसर्न्स हैं. अच्छा जी, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, एज इफ वो जो गए थे एड मर्की गए थे, वो जो सेनेटर अमेरिकन, या कि वो जो हाउस स्पीकर थी यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, आज जनाब क्या हुआ है कि आज जो इंडियाना के गवर्नर हैं वो भी जनाब ताइवान पहुंच गए हैं. अब वो मिलने के लिए पहुंच गए हैं ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, उनसे. ये देखें, ये साई इंग वेन मैं हूं और वो इंडियाना का गवर्नर जो है वो जो है वो आप हैं माजिद भाई, देखें जरा. तो जनाब ये भी इधर पहुंच गए हैं 4 डे विजिट के ऊपर और ये कह रहे हैं जी हम तो इकोनॉमिक एक्सचेंज करने आए हैं, हम आपके साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं. तो अब ये जो चाइना आपको बड़े अरसे से मिलिट्री थ्रेट्स दे रहा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं यूएसए वाले, और ट्रेड हम बढ़ा रहे हैं, प्यार आपके साथ बढ़ा रहे हैं, और बड़े सस्टेनेबल सप्लाई चेन और डेमोक्रेसी चिप्स और ये चीजें जो हैं और वो हम आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं और आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं. अब चाइना ने फिर से इनको कहा, उन्होंने कहा जी कि ये तो आपको पता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं ताइवान जो है हमारा हिस्सा है, इसके ऊपर आप ना आओ, आपको बड़ा मना किया है. नहीं जी नहीं, अमेरिका जो है वो तो मतलब है उसने उसको छेड़ना ही छेड़ना है चाइना को, किसी तरह के वो लड़ाई शुरू करें हैं जी. अब जब लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर ओ ये दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे आर फैसिस्ट गवर्नमेंट्स, दे आर डिक्टेटर्स, दे आर फलाना तो टमकाना. तो अपने जो एक्शन होते हैं उसके ऊपर कुछ जोर नहीं है, है जी भाई. बैक टू बैक आपने अपने 3 जो है डेलीगेशन उधर भेज दिए हैं, तो भाई आपके ऊपर भी तो कोई अंकल सैम कोई होने चाहिए ना, रेंस खींचो ना थोड़े लोगों के कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों बिला वजह आप इंटरफेयर, ये क्योंकि बिल्कुल ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस समझ रहे हैं ना चाइना कि 3 दफा वार्निंग्स अब दे दी हैं आपको, फिर भी आप बंदे अपने भेजे जा रहे हो, तो भाई क्यों छेड़ रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो बिला वजह. ऑलरेडी स्यापे कम है दुनिया के अंदर, तो चैन से बैठो अपने मुल्क में, आपके अपने मुल्क का इतना बुरा हाल है ना जी ना. ये अब जी तीसरा डेलीगेशन आज जो है ताइवान में पहुंच गया है और इनका नाम है एरिक हॉलकॉम, इनकी आज मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट साई के साथ. अच्छा जी, फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो अब कह रही है कि जी 3000 व्हाइट कॉलर्स जो वर्कर्स हैं उनको अब हम कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन भी है, वैसे तो उन्होंने ये इतना खुल के नहीं कहा कि हमारी कंडीशन खराब है, लेकिन स्टोरी असल में यही है. लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इंटरनल कंबस्टन व्हीकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं बैटरीज के साथ, हाँ बैटरीज के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए तो भाई पाए हैं, तो उसके लिए तो फिर आप ज्यादा बंदे आपको चाहिए. नहीं, 3000 बंदा निकाल दिया है. वो कहते हैं जी 2000 तो फुल सैलरीड जॉब्स पे जो थे लोग उनको निकाला है और 1000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाला है, विच रिप्रेजेंट 6% ऑफ 31000 फुल टाइम सैलरीड वर्कफोर्स. तो वो कहते हैं जी कि आप इसमें जाहिर है कि इसके ऊपर जो है ये बंदूक चलेगी, सिर्फ यूएसए के अंदर नहीं कनाडा में भी, कनाडा में भी लोग अपनी जॉब्स जो है लूज करेंगे, इसके अलावा इंडिया के अंदर जो इनका प्लांट है उसमें भी कुछ लोग जो है अपनी जॉब्स लूज करेंगे. तो ये काफी इनका बड़ा मेजर जो है वो हथौड़ा इन्होंने चलाया है, तो अब देखेंगे क्या होता है. इंडिया के अंदर जी जो राजधानी है उनकी दिल्ली, उनके जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया साहब, वो आज बड़े गुस्से में थे और उनके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज जो हैं स्टेट लिकर पॉलिसी में उस सिलसिले में इन पे लगाई गई हैं। तो आज इन्होंने मनीष सिसोदिया साहब ने एक ट्वीट की है, उसने कहा कि जो कुछ बीजेपी कर रहा है, मेरा जवाब बीजेपी को यह है कि मैं एक राजपूत हूं और महाराणा प्रताप का मैं जो है डिसेंडेंट हूं और मैं अपना सिर इन कॉन्स्परेटर्स और इन करप्ट पॉलिटिशियंस के आगे नहीं झुकाऊंगा। मेरे आगे जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो सारे फॉल्स हैं। और ये बीजेपी ने सीबीआई को कहा है कि ये रेड्स करो जो 21 हाउसेज में की थी, उसमें एक मेरा भी घर था। और जो है ये सीबीआई वाले कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है आप, उसके अंदर ग्रोस प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, जो इन्होंने एक्साइज पॉलिसी अपनी बनाई थी और जो इन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई थी उसके लिए। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहां पे विनायक कुमार सक्सेना, उन्होंने कहा था सीबीआई को कि भई आप अपनी प्रोब करें। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने अनड्यू फेवर्स लोगों को दिए हैं और इनके जो है लाइसेंस फीस वेवर की है, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। इसके अंदर जो स्टेट है यानी कि दिल्ली जो है उसको 140 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है, और ये सारा पैसा जो इन्होंने इस तरह से जमा किया था वो पंजाब के इलेक्शन में लगाया, तो वहां पे इस तरह से ये आम आदमी पार्टी जीती है और इस तरह से इन्होंने बीजेपी को हराया है, तो ये सारा गलत तरीके से था। तो आज मनीष सिसोदिया साहब ने कहा जी नहीं, ये इनकी ये तकलीफ नहीं है कि हमने कोई स्कैम किया है, इनको सिर्फ तकलीफ जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है। और चूंकि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ मैं खड़ा हुआ हूं, तो अब इनको मेरे से भी तकलीफ आने लगी है। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि ना तो आप हमारी स्पिरिट को पहले तोड़ सके थे, ना आपको हम तोड़ ना अब आप तोड़ सकोगे, और 2024 का जो मोर्चा निकलेगा वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में निकलेगा, और उसमें आम आदमी पार्टी जो है अपनी गुड पॉलिसीज की वजह से दिल्ली में फिर से जीतेगी।
यूके, स्विट्जरलैंड और इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दी वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा। कैनेडा विच खालिस्तान दी वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा। ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दी वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नूं गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्यूनिटी सेंटर विच सवेरे 9 बजे तो लैके शाम दे 5 बजे तक पैणगियां। होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2669।
कनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग की जानिब से पेश खिदमत है फंटास्टिक फैमिली फन फेस्टिवल, एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में, और साथ ला रहा है तरह तरह के चटखारेदार खाने, बच्चों के खेल, झूले, मुकाबले, लाइव शोज, ओपन एयर बाजार, शायकीने क्रिकेट के लिए अजीम शान क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ। जबरदस्त तफरी और दाखिला बिल्कुल मुफ्त ऑन August 26, 27 and 28 at CAA Center रैम्पटन। मजीद मालूमात और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें fantasticfest.com।
द मोस्ट ग्लोरियस, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट स्टार स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन। हम अवार्ड्स वंस अगेन इन कनाडा ऑन 24 सितंबर 2022, फर्स्ट ओंटारियो सेंटर। To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to hamawards.ca.
जी,
जी, पीटीआई की न्यूज है, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है, और इसके मुताबिक राजस्थान के कांग्रेस चीफ जो हैं गोविंद सिंह दोतासरा, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, एक वीडियो, और वीडियो शेयर किया है उन्होंने बीजेपी के फॉर्मर एमएलए थे ज्ञान देव आहूजा का, जिसके के अंदर उन्होंने ये, इन्होंने कांग्रेस के जो लीडर हैं दोतासरा साहब, उन्होंने कहा जी कि ये असल जो फेस है बीजेपी का वो सामने आ गया है कि ये किस तरह हेट्रेड और कॉम्युनलिज्म और एनिमिटी जो है मुल्क के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो वीडियो उन्होंने जो शेयर की है उसमें क्या है, उसमें देखा जा रहा है कि ये जो बीजेपी के एमएलए हैं ज्ञान देव आहूजा साहब एक इवेंट में बैठे हुए हैं, और उस इवेंट में एक स्पीकर जो है वो बोल रहा है और वो कह रहा है कि ये जो मेव मुस्लिम कम्युनिटी ने गोविंदगढ़ टाउन के अंदर जो एक लड़का चिरन जलाल सैनी को मारा है, तो हम अब इसका बदला लेंगे। तो अलेजली उसने उसकी लिंचिंग की है मुसलमानों ने, तो ये जो है आहूजा साहब उसको रोकते हैं और उसको रोक के बोलते हैं कि ये काम हमने पहले ही शुरू कर दिया है, और जो कोई भी लिंच करेगा, हमने ऑलरेडी 5 मुसलमानों को जो है ये इसका सबक सिखा दिया है लवंडी और बहरोर के इलाके में, और मैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको फ्री हैंड दे रहा हूं कि कोई भी मुसलमान अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो तुम उसको मार दो जान से, उसको किल कर दो, और कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें इन मर्डर केसेस से एक्विक्ट कराऊंगा और मैं तुमको बेल सिक्योर करके दूंगा। तो उसके ऊपर जो है ये दोतसरा साहब ने कहा कि ये जो है ये इस तरह की चीजें हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में नफरतें फैलाएंगी और हमारा सेक्युलर फैब्रिक खराब करेंगी, और ये है बीजेपी का असली चेहरा और उसके लोगों का असली चेहरा कि एक दूसरे के साथ लड़ो मरो और जो है ये कम्युनलिज्म फैलाओ, तो यही वो चाहते हैं और यही इनका एजेंडा है, और ये जो वीडियो है ये उसको शो करती है। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, और वायर की स्टोरी के मुताबिक WHO ने जो कोवैक्सिन थी भारत बायोटेक की, उसको अब लेने से इनकार कर दिया है। द वायर की ये स्टोरी कहती है जी कि WHO ने भारत बायोटेक को कहा था कि तुम्हारी कोवैक्सिन जो तुम UN की एजेंसीज को दे रहे हो, उसका जो मेन्यू स्टैंडर्ड्स हैं या जो तुम्हारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक नहीं है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, तो इन तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन के अगेंस्ट ठीक करने की जरूरत है। भारत बायोटेक ने कुछ अर्सा पहले जून के महीने में WHO को एक असेसमेंट के लिए रिपोर्ट डाली थी, उसको देखने के बाद WHO ने कहा कि नहीं, आपके क्वालिटी अश्योरेंस अभी भी नहीं आपको हमको दे रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हम आपका जो है सस्पेंड कर रहे हैं सारा जो हमारे साथ डील है। जिस वक्त तक भारत बायोटेक अपने मैन्युफैक्चरर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ठीक नहीं करेगा, हम आपसे ये दवाई कोविड वैक्सीन जो COVID-19 की वैक्सीन है ये आपसे हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि दिस डील वॉज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है। पाकिस्तान के अंदर जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है कि जो हाई प्राइसेस हैं और जिसकी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जिसकी वजह से लोग जो है मोर्चे निकाल रहे हैं पाकिस्तान में और सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए हैं। कुछ दिन पहले जो है मोटरवे सारी जो है लोगों ने रोक दी थी, उस सिलसिले में आज हाई लेवल मीटिंग चेयर की है इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने कहा जी मैं लोगों का खादिम पाकिस्तान हूं और लोगों की ग्रीवेंसेस जब मेरे पास आती हैं तो मेरा काम है एज अ खादिम उनकी जो ये ग्रीवेंसेस को खत्म करने के लिए। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुरम दस्तगीर और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अहद चीमा और बहुत सारे सीनियर अफसर इस मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि जी लोगों ने ये जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के ऊपर ये जो शोर मचा रहे हैं कि उनको बहुत लंबे लंबे बिल आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है वो हमें बताएं। उसकी वजह यह है जनाब के कुछ दिन पहले नेप्रा जो था उसने कहा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उनको कहा था कि अपने चार्जेस जो है उसमें बढ़ा दें, एडिशनल 155 बिलियन रुपीज हमको जो है कलेक्ट करने हैं बिकॉज ऑफ हाई जो है फ्यूल प्राइसेस और हमने ये एडजस्ट करनी है। तो एज अ रिजल्ट 11.37 रुपीज के इलेक्ट्रिक से और 9.89 पर यूनिट के हिसाब से ये बढ़ाया गया था और ये कहा गया था वापडा और डायस्को को कि ये आपने प्राइसेस बढ़ानी है, जिसकी वजह से लोगों ने शोर मचाया और उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले पंजाब के फार्मर्स जो थे वो भी आए, उन्होंने कहा जी हमसे खेती जो करना है अब मुश्किल हो गया है क्योंकि बिजली के इतने प्राइसेस हैं। तो उसका आज नोटिस लेते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे बताया जाए कि ये प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने भी आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने एक्यूज किया इमरान खान साहब को कि ये जो है लोगों के अंदर हेट्रेड और जो वायलेंस है वो इंस्टिगेट कर रहा है और शहबाज शरीफ की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है, ये इंतहाई एंटी आर्मी कैंपेन्स चला रहा है और कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहा है और फॉल्स नैरेटिव ये कर रहा है और प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और जब से हमने PTI की गवर्नमेंट को आउस किया है तो ये जो हैं इनकी इनको तकलीफ शुरू हो गई है, और हम तो जब से इन्होंने लैंड माइंस बिछाई हुई थी इकोनॉमी के ऊपर तो हम उन लैंड माइंस को खत्म करके इकोनॉमी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम बड़ा कंसिडरेबली हमें बड़ी जो है वो सक्सेस भी मिली है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इन चीजों को ठीक कर सकेंगे। लेकिन एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है वो ये सब कुछ ठीक होते हुए नहीं देख सकता, वो मुल्क में बेहतरी नहीं चाहता और انارکی اور ہیٹریڈ جو ہے وہ پھیلا رہا ہے اور جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ شیک کرتی ہے. اور عمران خان خود سب سے بڑا ٹھگ ہے, مریم اورنگزیب کا کہنا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی جب بھی کبھی اس کو کسی کیس کے لیے بلایا جاتا ہے, جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا, ایف آئی اے نے بلایا, ہیلی کاپٹر کیس میں بلایا, توشا خانہ ریفرنس میں بلایا, تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے, جیسے کہ یہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ جی ڈی چوک پہ آؤ اور ادھر آؤ اور بنی گالا, اور پھر خود بھاگ جاتا ہے. تو یہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو جناب یہ انہوں نے آج الیگیشنز لگائے. اس کے علاوہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے 3 ڈے جو ہے ٹرانزٹری بیل دی ہے عمران خان صاحب کو ٹیررزم کیس کے اندر. آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے جو یہ تھے پولیس کے کچھ بندے اور جو تھیں وہ ایک جج تھیں, ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو آپ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی باری آئے گی. اس کے اوپر جی ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگائے گئے تھے کہ آپ نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے. تو آج یہ جو پلی تھی جو عمران خان کے کاؤنسلز ہیں فیصل چودھری اور بابر ایوان, انہوں نے یہ ڈالی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ بنی گالا جو ان کا ریزیڈینس ہے اس پہ ساری رات جو ایک ڈرامہ چلتا رہا, پولیس جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے آ رہی تھی کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا عمران خان صاحب کہاں ہیں. اور ان کے جو ورکرز تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو بالکل آپ کو نہیں کرنے دیں گے گرفتار. تو جو جسٹسز تھے محسن اختر کیانی اور بابر ستار, انہوں نے وہ یہ سن رہے تھے جب ان کے پاس یہ ایف آئی آر لائی گئی تھی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ان کو کیونکہ چیزیں پوری نہیں ہیں کہ کیونکہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آنا چاہیے, یہ اینٹی ٹیررزم کیس پہ جانا چاہیے اور بائیو میٹرک ویریفیکیشنز بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو 25 اگست تک ڈیفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ کیس لائیں. مین وائل جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے پی ایم آفس کو کہا ہے کہ ایک ریٹن پرمیشن ہمیں دو تاکہ ہم عمران خان صاحب کو اریسٹ کر سکیں. تو یہ چل رہا ہے. عمران خان کا جو ریزیڈنس ہے جی بنی گالا, اس کے اندر آج پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز الہی اور ان کے جو بیٹے ہیں مونس الہی, ان لوگوں نے آج ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹیررزم کے کیسز آپ کے خلاف لگائے گئے ہیں یہ بالکل غلط ہیں, جس میں کہا گیا کہ آپ نے تھریٹن کیا ایک فیمیل جج اور پولیس والوں کو, وچ از ناٹ رائٹ. آپ نے صرف یہ کہا کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو ایز اے ریزلٹ جو ہے پنجاب کے اندر نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو بلکہ عمران خان صاحب کو جو ہے سیکیورٹی دی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی. لیکن مین وائل جب یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا ہے کہ بھئی پنجاب کے اندر آپ اپنے ویلفیئر پروجیکٹس جو ہم نے شروع کیے تھے وہ آپ چلاتے رہیں اور جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ آج آئے ہوئے تھے پارٹی ممبرز, انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت عمران خان کو اریسٹ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. فارمر فائنانس منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جی, انہوں نے آج ایک اپلیکیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور ویسے تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے ایک اوریجنل جو اپنی ڈالی تھی اپیل ڈالی تھی 2018 میں ڈالی تھی, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے جو ہے پروکلیمڈ افینڈر جو ہے نیب نے کہا ہے, حالانکہ میں ایک سینیٹر ہوں اور میں پاکستان میں آنا چاہتا ہوں. لیکن اب جو انہوں نے کہی ہے جو اپنی وہ ڈالی ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے اپنی نئی پٹیشن میں کہ جو ہے مجھے جو ہے ملک میں اپنے میرٹ پہ آنے دیا جائے اور میرٹ کے اوپر آپ جو ہے فیصلہ کریں. اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بلیک لسٹ کیا تھا انہوں نے ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس والوں نے, ایز اے ریزلٹ جو ہے 2018 سے ہی نہ تو پاکستانی کوئی مشنز نہ تو پاکستان کے اندر پاسپورٹ آفس جو ہے مجھے پاسپورٹ ہی ایشو نہیں کر رہا ہے تو میں پاکستان آ نہیں سکتا ہوں. تو یہ اس سب چیز کو آپ ریویو کریں. تو اب سپریم کورٹ جو ہے اس پہ کیا فیصلہ دے گی ہم آپ کو بتائیں گے. پی ٹی آئی کے جو میورل کینڈیڈیٹ ہیں کراچی میں محمد اشرف جبار قریشی, انہوں نے کہا جی کراچی کو 3 لوگوں نے برباد کیا, یہ بربادی شروع ہوئی جماعت اسلامی سے, اس کے بعد اس کو برباد کیا ایم کیو ایم نے, اور اس کے بعد جو آخری کیل جو ہے وہ ٹھوکا وہ پی 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 نے. تو ان 3 نے برباد کیا کراچی کو, ورنہ کراچی تو بڑی زبردست جگہ تھی. انہوں نے کہا یہ بربادی شروع ہوئی نعمت اللہ خان جو کہ سٹی ناظم تھے جے آئی کے, ان سے شروع ہوئی اور وہ بڑی بڑی بس صرف باتیں کرتے تھے کہ میں نے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور پارک اور روڈیں اور سکول اور واٹر سپلائی سکیمز کی ہیں. تو دو اب جو ہیں وہ صدیاں گزر گئی ہیں, سوری دو ڈیکیڈز گزر گئے ہیں, یعنی 20 سال گزر گئے ہیں, نہ تو وہ ہمیں روڈیں نظر آ رہی ہیں نہ وہ سکول نہ واٹر سپلائی کے سکیمز, تو وہ کہاں ہیں وہ سارے پروجیکٹ جن کا یہ کیا تھا. اس کے بعد جی آگے ایم کیو ایم والے, انہوں نے مارو گھراؤ جلاؤ اور وہ جو ہے سارا بھتے لینے اس کی پالیٹکس کی, اور اس کے بعد جی پی 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 والے آگے جنہوں نے کہ لوگوں کی میں اور اضافہ کیا. تو ایز اے ریزلٹ اب لوگ سمجھ چکے ہیں کراچی کے, اور کراچی کے لوگ جو ہیں اب جو ہے صرف ہم کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو तो माजिद भाई, जैसे कि मैं भी आपको बता रही थी न्यूज से पहले कि एलन मैकग्रॉ की बड़ी जबरदस्त एक किताब थी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, वो मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी। तो परसों वीकेंड के ऊपर मेरा जो कजन है उसने मुझे फिर भेजी है। तो मैं आप सब लोगों को कहती हूं कि ये जो है एलन मैकग्रॉ की बुक द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान आप जरूर पढ़ें। दे स्टार्ट विद 1947 जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, और उसके बाद फिर कैसे 1954 में सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उसको डिरेल किया, और कैसे फिर जो है फौजी आते रहे, और कैसे डेमोक्रेसी नहीं चली, और फिर क्या क्या जो लोगों का किरदार था। यानी उसमें बड़ी खूबसूरत चीज है, जैसे उन्होंने जिना साहब के प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि किन प्रिंसिपल्स पे पाकिस्तान को बनाया गया था, कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, पाकिस्तान हर किसी के लिए था। और पहली स्पीच उसने जिना साहब की उसमें कोट की हुई है कि जिसमें कहा है कि विदाउट एनी कास्ट क्रीड और एनीथिंग यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर चर्चेज, योर टेम्पल्स। तो उस वो स्पीच को उसने कोट करते हुए और उसने कहा कि कैसे फिर ये जब बाकी लोग आए, कैसे अपने अल्टीरियर मोटर्स के साथ इन्होंने किया, भुट्टो साहब ने क्या क्या बर्बादियां लाई, और जो जियाउल हक साहब ने फिर क्या क्या कुछ नुकसानात मुल्क के किए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड बड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने लिखी हुई आदमी ने। तो ये आप किताब जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चले, क्योंकि ट्रूथ जो है हमारे बताया नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों से प्यार करते हैं, मुल्क से तो प्यार करते नहीं है, तो एज अ रिजल्ट हम लोगों के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। बहरहाल ये किताब पढ़ें, आपको पता चलेगा, बड़ी खूबसूरत उसने बुक लिखी है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लंबी किताब है, बट इफ यू वांट टू रीड तो आप जरा पढ़ें, लेकिन अगर आप कमजोर दिल की हैं तो ना पढ़ें, फिर आपका दिल दुखेगा जो क्योंकि सच्चाइयां बहुत हैं उसके अंदर, आपको पता चलेंगी। तो अच्छा जी, हमारी बाजी जो है, बाजी इज बैक, कंगना रनावत इज बैक अगेन। अच्छा जी, अब हुआ क्या है जनाब, हुआ यह है कि फिल्म फेयर वाले अवार्ड्स निकाल रहे थे और इसकी जो एक फिल्म आई थी जयललिता पे थालवी, उसके ऊपर ये इनको इन्होंने फोन किया फिल्म फेयर वालों ने कि आपको हम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देना चाहते हैं, तो दिया जा सकता है आपको, क्योंकि आपको हम नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप अपना घर का एड्रेस भेजिए। अच्छा, उसके ऊपर जी कंगना रनावत ने इनको सू कर दिया कि इन्होंने मुझे सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये मुझे बुला रहे हैं, ताकि इनकी जो है बड़ी वो बने शोशा बने, हाँ शोशा बने, तो वो बनाए। अच्छा जी, फिल्म फेयर को आ गया गुस्सा, उन्होंने इनका नाम ना सिर्फ ये कि नॉमिनेशन से निकाला, बल्कि जो इनको लेटर भेजा था वो अपना लेटर छाप दिया सारा, जिसमें कि फिल्म फेयर के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने इनको कहा कि हम आपको इन्फॉर्म करें कि आपको नॉमिनेशन किया जा रहा है थालवी के लिए, और आप हमें अपना एड्रेस भेजिए ताकि आप हम आपको इनवाइट भेज सकें, और उसके अंदर हमने कुछ ये इनको बताने की कोशिश नहीं की थी कि आपको अवार्ड भी मिल सकता है, या आप इवेंट के ऊपर आके कोई परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। हम तो जैसे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं कि शायद आपको नॉमिनेशन हम दे रहे हैं तो अवार्ड मिल सकता है, वैसे ही इनको भी एक भेजा गया था। तो इन्होंने ये समझ लिया कि अब ये पहले मुझे अवार्ड दे रहे थे तो अब नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है एक्यूजेशन है इनका, फॉल्स ये बातें कर रही हैं, तो ये सू बेशक कर सकती हैं। उन्होंने अपना लेटर जो है वो छाप दिया। एंड जनाब, अल्लू अर्जुन आपको पता ही है साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, अभी जो उनकी लेटेस्ट फिल्म आई थी पुष्पा, उसने तो सही बेजा बेजा करा दिया है ना जी, बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया। तो न्यूयॉर्क में गए हुए थे इंडिया डे पैरेड के लिए, तो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उनके साथ जी इन्होंने खड़े होके वो जो ठेंगा ले जेस्टर जो है अपना अपनी फिल्म के अंदर जो इन्होंने पुष्पा में किया है, वो इन्होंने जी उसको मेयर को भी सिखाया, उसके साथ डांस किए, और न्यूयॉर्क में इन्होंने जी बड़े मजे किए, अपनी बेगम के साथ थे वैसे ये, मजद भाई तो कभी ना जाते अपनी बेगम के साथ लेकिन ये जो है बड़ा अच्छा बच्चा है अल्लू अर्जुन, ये अपनी बेगम के साथ गया हुआ था। बहरहाल जी, इसने बड़ा थैंक यू बोला है न्यूयॉर्क के मेयर को। और जनाब, फर्स्ट टीजर जो है चिरंजीवनी जीवी जो है वो भी साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उनका जो गॉडफादर का फर्स्ट टीजर है वो आ गया है, और इसमें पहली बार चिरंजीवी की शक्ल देखी जा सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा लोग जो हैं वो इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो जो है एक मिनट का इनका टीजर, उसके अंदर वो सलमान खान साहब भी, अपने खुद के सल्लू भाई भी नजर आ रहे हैं। और ये फिल्म ऐसे चल रही है कि जी ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है, लेकिन इसके पीछे खड़ा हुआ है, जैसे माजिद भाई मेरे पीछे खड़े हैं, इसके पीछे खड़ा हुआ है सल्लू भाई, दुनिया का सबसे बड़ा भाई खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे बताओ। और फिर ये सलमान खान साहब बड़ी जबरदस्त एंट्री मारते हैं बाइक पे, तो लोग जो है वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं कि वाह जी, एक तो चिरंजीवी, उसके साथ फिर सल्लू भाई, तो वाह ये क्या फिल्म होगी। फिल्म का नाम है अगेन, वंस अगेन, गॉडफादर।
क्या बात,
ठीक है जी। तो ये माफिया के ऊपर ही है जाहिर है। एंड जनाब पाकिस्तान वालों का भी इंतजार हुआ खत्म 2018 में। आपको पता है डायरेक्टर बिलाव लाशारी जो थे वो कह रहे थे द लेजेंड ऑफ मौला जट मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन वो जो काम शाम वो सारा वो ठप हो गया था कोविड 19 की वजह से। इस फिल्म के अंदर है फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली, हम अब्बासी, हुमायमा मलिक, लेकिन अब इसकी नई जो है रिलीज डेट सामने आ गई है और अब कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी इसको रिलीज किया जाएगा। पीसीबी ने आज कहा है जी, बड़ी ही दिल दुखाने वाली आज खबर दी है और वो ये है कि शाहीन शाह आफरीदी शायद T20 एशिया कप में नहीं होंगे और इनको रिप्लेस किया गया है मोहम्मद हसनैन के साथ। और आपको पता ही है कि ये जो मैचेस हैं T20 के ये दुबई में खेले जाएंगे और जब इससे पहले अक्टूबर में लास्ट ईयर हुआ था तो शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी तबाही कुन बॉलिंग की थी इंडिया के खिलाफ खास तौर पे और उससे पाकिस्तान जीता था। तो अब हिंदुस्तान के लिए ये गुड न्यूज है। इंडिया और पाकिस्तान का जो ओपनिंग मैच दुबई के अंदर होगा संडे 28 अगस्त को होगा। इसके अलावा ये जो इनका ग्रुप टू के मैचेस जो हैं वो ग्रुप ए के जो सेकंड मैचेस हैं वो किसी भी क्वालिफायर से हो सकते हैं, चाहे वो हांगकांग हो चाहे सिंगापुर चाहे यूएई शारजा में 2 सितंबर को। लेकिन ये जो इंडिया के साथ मैच है August 28 को, इसके लिए लोग जरा थोड़े डरे हुए हैं और अफसोस कर रहे हैं। एंड जनाब पाकिस्तान हैज एक्चुअली अब जो है अपने बूस्ट उसने कर लिए हैं चांसेस टू डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, क्योंकि उन्होंने स्वीप किया है 3 मैच नेदरलैंड्स के साथ, जो ऑल 3 मैचेस ये जीते हैं। तो आफ्टर 6 of 8 स्केड्यूल सीरीज ऑफ 3 T20 ईच, इन्होंने जो पाकिस्तान का जो थर्ड नंबर था अब खैर ये ऊपर आ सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे, 120 ही मार्क्स हैं। लेकिन चूंकि अभी भी बांग्लादेश का जो रन रेट है वो ज्यादा है पाकिस्तान से, तो सेकंड पे है और पाकिस्तान थर्ड। बहरहाल नंबर्स दोनों के 120 है, पॉइंट्स हैं दोनों के पास। यूके अभी भी लीड कर रहा है, वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि यूके के पास अभी भी 125 जो है वो पॉइंट्स हैं आफ्टर 18 मैचेस, और न्यूजीलैंड जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है और उसके पास है 110 पॉइंट्स। अभी रिसेंटली जो उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था उससे उनकी जो है थोड़ी सी पोजीशन स्टेबलाइज हुई है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट यूके। यूके के बारे में आप कहा जा रहा है कि फाइनलाइज हो गई है कि ये पाकिस्तान में आएंगे आफ्टर 17 ईयर्स और रावलपिंडी के अंदर पहला मैच इनका होगा बिटवीन December 1 to 5। और इंग्लैंड जो है वो अपना स्क्वाड उन्होंने भी आज कहा है कि हम अपना जल्द ही अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जाकिर खान साहब ने कहा कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इन दोनों टीमों के बीच में जो राइवलरी होती है वो क्रिकेट के अंदर बहुत सारा जोश लाती है। तो ये अब जब वापस आएंगे तो वी विल बी प्लेइंग इन आवर ओन बैकयार्ड। सेकेंड मैच जो होगा वो मुल्तान में होगा ऑन December 9th और ये चलेगा मैच 13 दिसंबर तक। तो ये थी जनाब हमारी आज की
ये आज की खबरें। और अब शादी जी थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच, आई विल सी यू टुमारो।
स्पॉन्सर्स का पैगाम फिर 8 बजे वापस आएंगे हमारे साथ।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो, घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40,000 आइटम्स के साथ एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को। कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर। और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी। पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663 6477744888। विलेज टेस्ट।
चलो चलिए ताजियां सब्जियां लैन अपने फार्म कैलेडन सब्जी फार्म ते। आज ही आओ ते खरीदो स्पेशल डिस्काउंट ते ताजे चप्पन कद्दू, किया, साग, पालक, मेथी, धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, गाजर ते होर दूसरियां सब्जियां ते फल भी। इत्थे सब्जियां ते फलां दे बूटे, खाद, गार्डनिंग दा समान, पॉट्स, इंडियन तंदूर अते इंडियन बाईसाइकिल भी मौजूद है। होर जानकारी लई विजिट करो कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड, जा फिर कॉन्टेक्ट करो 905-9633
اگر ہو آپ اپنے فائنینشیل فیوچر سے پریشان تو کال کریں مجھے میرے مہربان، بنا کر کے دوں گا آپ کو ایسا پلان کہ آپ کی فائنینشیل پلاننگ ہو جائے گی آسان، مسئلہ ہو چاہے آپ کی مورگیج اتارنے کا، بچوں کی ایجوکیشن کا، یا آپ کی اپنی ریٹائرمنٹ کا۔ میرے پاس ہیں اویلیبل ایسے پلان جو میک شیور کرتے ہیں کہ آپ کو ملے اچھی بچت، لوئسٹ ریٹس، کیونکہ میں ڈیل کرتا ہوں تمام کی تمام انشورنس کمپنیز کے ساتھ۔ فائدہ اٹھائیے کال کر کے میرے لمبے ایکسپیرینس کا ایٹ 905-607-5000۔ میں ہوں فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز۔ سی یو۔
جی سر، پروگرام ایک تو پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ عارفہ مظفر، ایک ملاقات کی جانب لے کر کے بیٹھتی ہوں، اور بہت شکریہ جو لوگ یہاں پاکستانی ابراڈ جو ہیں، پاکستان سے باہر جتنے بھی ہیں، ویری ویل سیٹلڈ۔ آج جب میں ایک رپورٹ، آئی واز سرپرائز ٹو نو، ابھی چند تمہیں پہلے مجھے پتہ چلا، آپ کو بتائیے ہوگا کہ پروگرام جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں، تو میرا یہی تھا کہ ظلم کا عالم یہ ہے کہ سیاست سیاست اور صرف سیاست کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، تقریباً 450 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، 106 ڈویژنز ہیں پاکستان کی جو پانی میں اس وقت ڈوبی ہوئی ہیں، شدید بارشیں ہیں دو دریاؤں میں جہاں سے انڈیا سے پانی زیادہ آیا ہے، کہتے ہیں راوی اس وقت پورے طریقے سے بھرا ہوا ہے۔ چناب، راوی نے تو خیر اتنا مصیبت نہیں مچائی، مگر شدید بارشوں کی وجہ سے، اور ان بارشوں میں اراؤنڈ 375 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ابھی تو یہ وہ ڈیتھس ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، کئی اور ڈیتھس ہوں گی جو رپورٹ بھی نہیں ہوئی۔ اضلاع میں ٹوٹل 103 اضلاع ہیں جو پانی کے بیچ میں ڈوبے ہیں، اور 1,000,000 سے زائد افراد جو ہیں اس سے متاثر ہیں۔ غریب لوگوں کا جب نقصان ہوا بارش کی وجہ سے، کچے گھر بیٹھ گئے، ان کی تمام کی تمام قیمتی زندگی کی اساس ان گھروں کے بیچ میں تھی۔ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ ون نیوز ٹوڈے کہ وہ جو راشن بھی ملتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں راشن کے لیے کارڈ دکھاؤ، وہ کہتا ہے میرے کارڈ بھی پانی کے بیچ میں بہ گئے ہیں، میں کہاں سے کارڈ لے کے آؤں، آپ کیا بھوکا ماریں گے ان کو؟ دو ادارے ہیلپ کر رہے ہیں، میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ون از پاکستان آرمڈ فورسز جو ان ضرورت مندوں کو مدد پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا ادارہ جو ہے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ پاکستان میں اس دفعہ بارشیں بھی شدت کی ہوئی ہیں، بلکہ اگر ہم ذکر کریں تو پاکستان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ کی وہ کشمیر سے لے کے اگر آپ پشاور تک چلے، کراچی تک چلے جائیں، اور کراچی کی تو آپ کو پتہ ہے سڑکیں ویسے ہی ندی اور نالے بن کے رہ گئے ہیں، اور پاکستان کی اگر میں صورتحال کو ڈسکس کروں تو 103 اضلاع آل ٹوگیدر، 27 ضلعے ہیں جو بلوچستان کے ہیں جو پانی کے بیچ میں ڈوبے ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اور دو ادارے جس میں پاکستان آرمڈ فورسز کے جوان جگہ جگہ پہنچ کے خوراک کی ترسیل کر رہے ہیں، لوگوں کو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اینڈ دوسرا جو پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایسوسیشن ہے وہ۔ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پولیٹیکل کھینچا تانی کے بیچ میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ شاید پلاننگ نہیں کر پائے یا کیا ہے، مگر غریب لوگوں کی صورتحال بہت بہت بری ہے، بہت بری ہے اس وقت۔ یعنی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، مگر وہاں پہ آئی واز سرپرائز ٹو نو ون نیوز جسٹ ناؤ، میں نے پروگرام کے شروع کے حصے میں یہ کور کیا تھا کہ پاکستان میں وہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ لوگ بڑی اچھے طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں، جس میں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی سے، اور عمرہ کا اگر میں نام لوں تو وہ کہتے ہیں کہ جس میں انجمن ارائیاں پاکستان، میاں سعید ڈیرے والا، انہوں نے اپنے دوستوں سے پیسہ اکٹھا کیا، میاں طلت اورینٹ والے، چودھری شکیل، جی ایم کیبلز والے، جنرل غلام مصطفیٰ کوثر، میاں غلام مرتضی شوکت فاسٹ کیبلز والے، محسن گھر کی ہسپتال والے، چودھری حبیب کمل یونی بلڈرز والے، اور صنعت کاروں کے رہنما میاں زہد جاوید، میاں خالد حبیب، बहुत सारे रिच लोग हैं जिन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया है, और सैलाब से मुतासर इलाकों में खुराक, खेमे, कपड़े भिजवाने का एहतमाम किया। ये सैलाब की तबाहकारियाँ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से बल्कि सैलाब की तबाहकारियाँ शुरू हुआ करती होती हैं, क्योंकि जब पानी खुशक होगा उसके बाद बेशुमार बीमारियाँ आएंगी। जब पानी आ गया है तो लोगों की खुराक, कपड़ा, पानी, हर दे आर जस्ट ऑन स्क्वायर वन। उनको कपड़े की भी ज़रूरत है, उनको अनाज की भी ज़रूरत है, उनको खुराक की भी ज़रूरत है। तो ये तमाम की तमाम बाई प्रोडक्ट्स हैं एक सैलाब के या तूफान के। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में कोई मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तमाम लोग अपने TRP के लिहाज से लगे हुए हैं कि वो भी पोलिटिकल लोगों को कवर करने में। उन गरीब लोगों का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। आमिर शमसी भी मेरा सुपर बच्चा है, इसको पता भी है कि इस वक्त बाजी आरपा प्रोग्राम कर रही होती है, बट आई डोंट नो व्हाई दीज एजुकेटेड पीपल डू दिस। सैलाब के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। 103 अजला, 127 बलोचिस्तान की अगर मैं जिक्र करती हूँ, 450 लोग जो रिकॉर्डेड डेथ्स हुई हैं, अनरिकॉर्डेड डेथ्स यू नेवर नो कितनी हैं। और अभी अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएं तो कश्मीर की साइड के ऊपर और पहाड़ी इलाकों में हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी जो बिजली गिरने से जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं, दैट इज़ ऑन टॉप। इन सब को छोड़िएगा, कराची एकदम से सीधी हमवार सड़कें हैं, मगर कराची का अगर मैं जिक्र करती हूँ तो कराची में हैदराबाद में पानी के रेले के साथ एक बह जाती है पूरी की पूरी वैन, और 7 लोग उसमें सवार थे, पूरा का पूरा ख़ानदान ही बह गया। मैं ज़ाहिर है प्रोग्राम के शुरू में क्योंकि इसका जिक्र हुआ था, आज मेरे स्टूडियो में जिससे मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ, मियाँ तारिक जावेद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मियाँ तारिक जावेद साहब चेयरमैन POC, ठीक है, ये पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये चेयरमैन हैं, एंड दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ।
बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए, मैं बहुत एहसान मंद हूँ आपकी। बुनियादी तौर पे सर आपका ताल्लुक डेनमार्क से?
जी डेनमार्क से।
अच्छा, तो आप डेनमार्क में रहते हैं। आप जब पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी का जब मैं जिक्र करती हूँ, और आप डेनमार्क से हैं मगर ये ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द ग्लोब, अराउंड 100 कंट्रीज में काम कर रही है। 90
कंट्रीज।
व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन?
पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल 3 साल पहले हमने इसको लॉन्च किया था UK से, जब कोरोना शुरू हुआ था। तो कोरोना जब दुनिया में आया तो एकदम पैनिक फैल गया पूरी दुनिया के अंदर, और आपने देखा कि उस वक्त जो आपके अपने थे वो भी, जब आपके ऊपर कोरोना का अटैक हो रहा था, वो भी आपके नज़दीक नहीं आ सकते थे। और बेशुमार लोग जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैं UK की बात करूंगा, यूरोप की बात करूंगा, तो उस वक्त मुझे बड़ी शिद्दत से ये कमी महसूस हुई कि हमारी कोई ऐसी नेटवर्किंग नहीं है जो साउथ अफ्रीका में, जो रशिया में, जो मिडल ईस्ट में अपने बहन भाइयों की मदद कर सके। क्योंकि आपको याद होगा कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह लोग भूखे साथ, कोरोना से तो लोग मरे ही मरे हैं, लोग भूखे साथ भी मरे हैं, और जो वहाँ की जो हमारी कौंसलेट थे उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, पाकिस्तानियों का दाखला बंद कर दिया, पुलिस को बुला लिया, गिरफ्तार पाकिस्तानियों को करवाया।
वो मजबूरी थी
एकदम, उनके पास भी वसाइल नहीं थे, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ। उस वक्त हमने ये इस तंजीम की बुनियाद रखी थी। बेसिकली मेरा ताल्लुक पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, PTI के साथ था।
अच्छा, आप पॉलिटिकल रोल भी प्ले करते
जी
हैं।
मैं काफी क्लोजली मैंने पीपल्स पार्टी के साथ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया हुआ है, और इमरान खान साहब के साथ एज ए मीडिया एडवाइजर उनका मैंने काम किया है। लेकिन सियासी जमातों के साथ इतने साल काम करने के बाद मुझे जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि कोई भी सियासी जमात हो, वो PTI भी उसमें शामिल है, बाकी भी शामिल है उसमें, ये सब आपको एक ATM मशीन की तरह यूज करते हैं, और उसके बाद जब आपसे ये फंड ले लेते हैं तो फिर ये आपको भूल जाते हैं। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी, बहुत कम आपको ओवरसीज पाकिस्तानी मिलेंगे जो बहुत करीब होते हैं सियासतदानों के। ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उनको ان کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں اوورسیز میں بیٹھ کے. امریکہ کوئی آ رہا ہے, کوئی کینیڈا آ رہا ہے, یا کچھ جو ان کے فرینڈ مین ہیں, جو ان کی جو بلیک منی ہے اس کو وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ اوورسیز پاکستانی کردار ادا کرتے ہیں. تو اس میں لیکن جو جینوئن اوورسیز پاکستانی ہے اس کی بات اٹھانے کے لیے کوئی تنظیم کوئی نیٹ ورکنگ موجود نہیں تھی. میں دوبارہ اسی کی طرف آؤں گا, اپنی تنظیم کی طرف. تو پھر اس وقت ہم نے یہ اس تنظیم کی بنیاد رکھی, اور میں چونکہ لنڈن میں تھا اور فلائٹس بند ہو گئی 4 مہینے کے لیے, جو ہے نا وہ انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا, تو اس وقت پھر ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کیمپ کی. اور یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی نیٹ ورکنگ بن جائے گی, لیکن جس طرح ہم نے اس کو پرفارم کیا, جس طرح ہم نے اس کے لیے کام کیا, تو پھر ہر ملک کے ساتھ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے. تو اب یہ الحمدللہ 90 سے زیادہ ملکوں میں اس وقت یہ تنظیم کی جو شاخیں ہیں, جو اس کے پھول ہیں, وہ موجود ہیں. اور جب بھی ہمیں کسی ملک میں کسی اوورسیز پاکستانی کو کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ میرے تک مسئلہ آتا ہے یا میری تنظیم کے جو دوسرے عہدے دران ہیں ان تک آتا ہے, تو ہم یہ مسئلہ فوری بنیادوں پر اس کو حل کرانے کے لیے پاکستان کے جو آفیشلز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں.
زبردست. دو باتیں آپ نے جو کہیں کہ آپ نے کووڈ کے دوران اس کو شروع کیا تھا اور ظاہر ہے یہ مجبوری تھی مختلف اداروں کی, اور کینیڈین سسٹم میں تو ابھی تک بھی چیزیں اتنی لنگر آن ہو رہی ہیں کیونکہ آفیسز نے کام ہی نہیں کیا, اور ظاہر ہے ان دنوں میں ملنا ملانا مشکل تھا, آفیسز کھل نہیں رہے تھے. مگر وہاں پہ پی او سی پاکستان اوورسیز جو کمیونٹی گروپ ہے اس نے کام کرنا شروع کیا. تو آپ نے وہ جو لوگوں کے مسائل تھے ان کی پہنچ کاؤنسلیٹس تک کرا کے ان کے مسائل کو ریزالو کرایا تھا؟
جی جی بالکل, ہم نے وہ لوگ
وداؤٹ اینی چارج,
وہ لوگ جن کی ڈیڈ باڈیز آپ کو شاید یاد ہوگا شروع میں اٹلی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پاکستانیوں کی لاشوں کو بھی اوورسیز پاکستانیوں کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا تھا. تو اس وقت اتنا پینک تھا کہ آپ ان گورنمنٹ کے ساتھ آپ نہ رابطہ کر سکتے تھے. پھر ہم نے اسلامک سینٹرز کو, مسجدوں کو, ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا جو مسلمانوں کی لاشیں ہیں ان کو نہ جلائیں, آپ ان کے لیے کچھ الگ انتظام کریں. اس میں ہم نے کونسلیٹ کو, اسپیشلی کونسلیٹ کے جو جن لوگوں تک ہماری رسائی تھی ان کو آن بورڈ لیا. اور اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا تو اس وجہ سے میں کافی ایکٹیولی ان تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہا تھا. تو جہاں تک ہو سکا اس حکومت نے بھی ہیلپ کی اور ہم نے ان لوگوں تک بھی اناج پہنچایا. میں جیسے آپ کو مڈل ایسٹ کی مثال دوں گا,
ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فوڈ کی,
جی جی فوڈ کی سروسز اس طرح دی کہ ہماری جو خواتین تھی وہ اپنے گھروں میں کھانا بنا کے پیک کر کے لیبر کیمپ, جو وہاں پہ لیبر کیمپ ہیں یو اے ای کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر, وہاں پہ ایک ایک کیمپ کے اندر 100-150 اوورسیز پاکستانی رہتا ہے. وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک چارپائی, اس کے اوپر چارپائی, اس طرح وہ بےچارے زندگی بسر کرتے بنگ بیڈس میں, وہاں وہ بھوک سے مر رہے تھے. ان کے لیے پھر ہم نے فوڈ کا انتظام کیا, اور ہمارے لوگ جو اس وقت 2 لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے گاڑی میں, تو وہ پھر ہماری خواتین گاڑی کا بھر کے کھانا بنا کے پیک کر کے, تو وہ اکیلی جاتی تھی اور جا کے وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتی تھی اور ایک ایک بندہ وہاں سے آ کے وہ اناج لے کے جاتا تھا. یہ ہم نے اس وقت
آپ نے کمیونٹی کی گراؤنڈ پہ اکٹھا کیا تھا, یا کیسے اتنی چیزوں کو اکٹھا کیسے کیا تھا؟ کینیڈا میں بھی یہ ہوا تھا.
یہ دیکھیں یہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کی نیٹ ورکنگ تھی نہیں. یہ جو ہم نے تنظیم قائم کیا یہ اس وقت پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اتنی بڑی نیٹ ورکنگ کسی کے پاس نہیں. تنظیمیں بہت ہیں, تنظیمیں تو بہت ہیں جی, آپ کے کینیڈا میں بھی 100 سے زیادہ ہوں گی. ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں. میں جس دن سے کینیڈا آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں 14 یوم آزادی کے پروگرام ہوئے ہیں, اور میں اتنی سیڈ ہے میں کمیونٹی کا.
میں نے اس چیز کو بلکہ پوائنٹ آؤٹ کیا, انڈین کمیونٹی ایک پروگرام کرتے ہیں دیٹ از آرگنائزڈ بائی دی کاؤنسل, انڈین کاؤنسل, اور ڈاؤن ٹاؤن میں ہوتا ہے تمام, کوئی بندہ وکھرا وکھرا نہیں کرتا.
دیکھیں
ہمارا تو جی ہر, اور مزے کی بات یہ ہر بندہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ہونا چاہیے, مگر ہر انسان اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے دوسرے میں مرج
کرتے ایسے ہی ہیں. لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے کینیڈا میں, جہاں پہ اسکلڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اور مجھے ان کی سوچ پہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہیں سیکھ کے آئے, یہ یہاں پہ آ کے بھی وہی چدراہ.
معذرت درخواست کر رہا ہوں انٹرپٹ کرنے میں. ہمارے نام یہاں طبقے بنے ہوئے ہیں. ایک کلاس ہماری ہے جو بہت امیر ہے
جی,
شاید ڈنمارک کا بھی ہے. وہ اتنے امیر ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی میں اور دیسی کے بیچ میں منگل ہونا پسند ہی نہیں
پسند نہیں کرتے. بالکل ایسے ہر ملک میں ہے.
ایون انہوں ایک پروگرام ہوا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے, اور دے وینٹ ان ٹو دا اس میں لیک اونٹیریو پہ گئے تھے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو انوائٹ اینی بڈی ایکس وائی زیڈ. یہ ایلیٹ کلاس ہے. دیر از اندر کلاس جو اپنے کام میں اتنے مگن ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آئی ٹی سی ہیں, یا دیر از اندر کلاس جو بیچارے آئی ٹی اے کے بھی نہیں, اپنے آپ کو آئی ٹی کا شو بھی کر رہے ہیں. دے ہیو نو ویٹ ایٹ آل, نو ویٹ, اور بس وہ.
لیکن جس طرح
تھالی کے بینگن ہیں ہم,
جس طرح کی کلاس یہاں آئی ہے نا, اس طرح کی کلاس یورپ میں نہیں آئی, اس طرح کی کلاس مڈل ایسٹ میں نہیں آئی. کیونکہ انہوں نے تو چوز ہی ان لوگوں کو کیا ہے نا جو اسکلڈ لوگ تھے, جن کے پاس ڈگریاں تھیں, جن کے پاس پیسہ تھا. کچھ لوگ بزنس کی بیسس پہ آئے. یورپ میں تو ایجنٹ بندوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ علاقے یورپ میں پھینک دیتے ہیں, جس کو نہ اسکول جس نے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے نہ کالج کمپلیٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ صرف پیسے کمانے کے لیے یورپ میں آتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے. یورپ میں بھی ناروے ڈنمارک میں پہلے اسی طرح ہوتا تھا. شروع میں ایک دن میں چار چار پانچ پانچ پروگرام ہو رہے ہوتے تھے کشمیر کے, یوم آزادی کے. لیکن اب وہاں ہم نے سیکھا ہے اور اب ہم نے ان کو میلوں کا نام دے دیا. ایک میلہ ہوتا ہے پورا سال, اگر ہم ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے نا, لیکن میلہ ایک ہی ہوتا ہے جس میں تمام تنظیمیں مل کر حصہ لیتی ہیں. ناروے میں بھی ایک ہی میلہ ہوتا ہے, یوم آزادی کا میلہ, جس میں پاکستان سے آفیشلز بھی آتے ہیں. اور وہ اتنا بڑا میلہ ہوتا ہے کہ جس میں 65,000 پاکستانی ناروے میں ہیں, 35,000 پاکستانی ڈنمارک میں ہیں, 10,000 پاکستانی سویڈن میں ہیں. تو یہ پاکستانی اور ان کی فیملیز, ان کے بچے, وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں.
حالانکہ کینیڈا میں تو ہم لاکھوں میں ہیں.
کینیڈا میں تو آپ لاکھوں میں ہیں. مجھے تو یہاں پہ آ کے عجیب لگا کہ یہ لوگ اپنے 14 پروگرام یوم آزادی کے.
سیڈ.
تو بہرحال یہ اللہ کرے کہ یہ بھی سیکھیں اور یہ بھی ایک میلہ کر لیں, سب مل کے کر لیں. چدراہٹ کا شوق تو سب کو ہے. لیکن
آپ میلے کی بات کریں, یہاں تو ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, اس میں بھی چار بندے, چار پارٹیاں بن جاتی ہیں اور چاروں کا ایک ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ کمیونیکیشن. سو
آپ, میں تھوڑا سا ذکر کروں. آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے انجمن آرائیاں کا, سعید صاحب کا, سعید ڈیرے والا کا, گرکی فیملی کا. میں بھی ان کا حصہ ہوں کیونکہ میں بھی ارائی ہوں. میرا بھی لاہور سے ہی تعلق ہے. اور فاروق گرکی فیملی جو ہے وہ ہاسپٹل, گرکی ہاسپٹل, فری ہاسپٹل چلا رہی ہے.
کمال کا کام. آپ یقین کیجئے گا, میرا ہارٹ کرائز کے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے دو میرے ادارے ہیں. میں پاکستان کی آرمی کو اس لیے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ دیر از دا اونلی آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن.
بالکل
ٹھیک ہے.
سب سے پہلے
دوسرا ڈیزاسٹر
دیکھیں, ارائی فیملی نے یہ اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ شباز گل ہی ہو رہا ہے ہر طرف. لیکن جو لوگ مر رہے ہیں, پانی سے مر رہے ہیں, بجلی سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, اس کی طرف حکومت کا کسی کا دھیان نہیں ہے. صرف ہمارے جو آرمز فورسز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یا جو لوکل. آپ کو میں نے بھی آنے سے پہلے بھی ایک میسج بھی آپ کو فارورڈ کیا ہے. سینیٹر ثنا جمالی نے مجھے آج صبح وائس میسج بھیجا. اس نے کہا ہے کہ طارق بھائی لوگ مر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کچھ کریں. تو میں یہاں پہ
سینیٹر ثنا جمالی کن کی بیٹی ہیں؟ وہ
جمالی صاحب کی بیٹی ہیں جو سپیکر ہیں اس وقت اس کے بلوچستان اسمبلی کے.
اچھا.
اور یہ خود بھی سینیٹر ہیں اور وہ اتنی اس وقت مایوس ہوئی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کی مدد کس طرح کی جائے. اب انہوں نے ہماری تنظیم سے مدد مانگی ہے, تو انشاءاللہ میں ابھی فوری طور پہ اپنی ایک میٹنگ کال کروں گا اور ہم فوری طور پہ سیلاب زدگان جو پاکستان میں ہیں ان کی جس طریقے سے بھی ہم سے مدد ہو سکے گی. ہماری برادری تو کر ہی رہی ہے لیکن ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ضرور حصہ ڈالیں گے. اور یہاں بھی میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ مہیر حضرات جو کہہ رہے ہیں,
میں تو خود کرنا چاہتی ہوں. میں نے ٹرک کی اور مجھے نہیں تھا, یہاں ہماری ایک لسنر ہے, میں نے اس کا نمبر سنبھال کے رکھا ہے. شی از فرام مسز ساگا, اس نے مجھے میری آنکھیں اس نے کھولی تھی. اور آئی وانٹیڈ, پھر ہم نے انکوائر کیا یہاں سے جو کنٹینر جا رہا ہے 4,000 American dollars میں جا رہا ہے, آئی واز ریڈی. اب معاملہ کہاں آ کے پھنس گیا کہ کراچی میں سے چھڑوائے گا کون اور بلوچستان لے کے کون جائے گا, اتنے آ کے میں پھنسی ہوں. تسی مینو یہ انتظام کروا دیو کنٹینر میں اتھو لے کے جانی, آپ کو دے دیتی ہوں. آپ
بہت شکریہ, لیکن میرا خیال ہے کہ
والے بڑے کمال کے لوگ,
جتنا اس وقت فریڈ ہوا ہوا ہے کنٹینروں کا,
4,000 1,000 میں جاتا تھا, یہ 4 times ہو گئے, 4,000 American.
آپ بجائے اس کنٹینروں کو بھیجنے سے آپ پاکستان سے چیزوں کو پرچیز کریں اور وہیں سے اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. ہم اس میں آپ کا سہارا.
اگین معاملہ تو صرف کنٹینر بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں سے جو میں نے پتا کرایا یہاں سے 4,000 American, 4,000 to 5,000 American ہے پاکستان میں, وہاں سے بلوچستان جانے میں 2.5 to 3 lakh rupees ہے.
40 days لگیں گے آپ کو, آپ کا آپ تو دیکھیں نا 40 days آپ لوگوں, وہ جو لوگ بےچارے بےیاروں مددگار,
مگر اگر ہم وہاں سے بھی خرید کے پہنچاتے ہیں تو بلوچستان پہنچایا کیسے؟
ہم پہنچائیں گے, ہماری تنظیم بن جائے گی پاکستان میں, ہماری تنظیم کی پوری شاخیں ہیں, ہمارے 3 head offices ہیں. آپ اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تنظیم یہ ذمہ داری لے گی, ہم آپ پہنچائیں گے اور آپ کو باقاعدہ ہم وہ پہنچا کر آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ ان لوگوں تک ہم نے یہ چیزیں پہنچا دی ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو